मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज जून का पहला दिन है, वर्ष वही है 2018। तो आज इस 1 जून 2018 के afis.com के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल मित्रों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। और मैं शुभकामनाएं क्यों प्रेषित कर रहा हूं मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप सिविल सर्विस की तैयारी करते आ रहे हैं, आपकी आंखों में एक सपना है सिविल सर्वेंट बनने का। और ये सपना केवल आपकी ही आंखों में नहीं पल रहा है, आपके अभिभावकों के आंखों में भी पल रहा है, आपके परिचितों रिश्तेदारों के आंखों में भी पल रहा है। और याद रखिए कि इस सपने का जो बीज है वो आपने ही बोया है। हो सकता है कि बहुत से पेरेंट्स खुद भी ये चाह रहे हों कि मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है, वो सिविल सर्वेंट बने, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह आपकी भी अपनी डिजायर रही है और लंबे समय से आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ अपने घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपने घर को छोड़कर कहीं और रहकर तैयारी कर रहे हैं, केवल घर ही नहीं छोड़ा है बल्कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह से इसी के लिए समर्पित है। और किस वक्त को आपने समर्पण किया है, वो वक्त जो आपके जीवन का सबसे ऊर्जावान वक्त है, सबसे ऊर्जावान, मोस्ट डायनेमिक पीरियड ऑफ योर लाइफ। मित्रों, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं अब वह वक्त आ गया है जब उसकी शुरुआत होने जा रही है, उसके जांच की शुरुआत। प्रारंभिक परीक्षा दो दो दिन के बाद ही है, 3 जून को आप प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होंगे। और बट नेचुरल है कि इसकी सफलता ही आपको सेकेंड स्टेज की अनुमति दिलाएगी, अदरवाइज आपको फिर से इसी की तैयारी करनी होगी। और यह भी स्वीकार करना होगा हमें कहीं न कहीं मन ही मन कि अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, सबका तो होना नहीं है, लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, हजारों का सिलेक्शन होना है, सबका नहीं होना है। कोशिश हम केवल इतनी कर सकते हैं कि सिलेक्शन होने वालों में हमारा नाम दर्ज हो, और यह चाहत सबकी होती है। लेकिन चाहत होने से ही क्या होती है मित्रों, अगर चाहत होने से ही होता तो हम कब के पता नहीं क्या क्या चीजें पा चुके होते और इसकी जरूरत ही हमें नहीं रह गई होती। अब आपने अपने इस तैयारी को जितनी ईमानदारी के साथ अंजाम दिया है, मान करके चलिए कि ये परीक्षा आपके सामने उसी रूप में आपके लिए परिणाम प्रस्तुत कर देगी। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं मित्रों कि किस ईमानदारी से आपने तैयारी की है। और जब मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं तो मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तैयारी की बात कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि अब जो भी तैयारी आपकी होनी थी हो चुकी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अब अपने दिमाग को बंद कर दीजिए इस मामले में कि मेरी तैयारी कैसी है, ये सोचना बंद कर दीजिए। केवल सोचना ही बंद मत कीजिए बल्कि इस पर बात करना भी बंद कर दीजिए। बात करना बंद कर दीजिए का मतलब है कि न तो दूसरे से ये पूछिए कि भैया तुम्हारी कैसी तैयारी है, और न अपनी तैयारी के बारे में उसको कुछ बताइए, और न उससे जानिए कि तुमको क्या लगता है मेरे बारे में। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक कुछ दिनों से, दो दिनों के लिए कम से कम आप समझ लीजिए कि जिसकी कोई चर्चा नहीं होनी है, जबकि ये अब आपके जीवन का सबसे ज्यादा परीक्षा की घड़ी का क्षण है, इसके बावजूद इस पर कोई बात मत कीजिए। क्योंकि आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो सिविल सर्विस की जो प्रारंभिक परीक्षा है, नो डाउट कि वो ज्ञान की परीक्षा अपने लेवल पर है, आपके एक्सप्लेनेशन पावर की परीक्षा अपने लेवल पे है, अनुमान की परीक्षा अपने लेवल पर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इसके साथ ही मनोविज्ञान की भी परीक्षा है। ये एग्जामिनेशन ये देखना चाहता है कि आपका दिमाग कितनी तेजी के साथ चीजों के बारे में सोच करके और सही तक पहुंच सकता है, ये आपके दिमाग की गति को देखना चाहता है। और दिमाग की गति को देखते समय यह सिर्फ दिमाग की गति तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह आपके दिमाग के संतुलन का भी परीक्षण करता है। संतुलन क्यों, गति किस तरीके से, अब आप देखिए 100 प्रश्न आपको बनाने हल करने हैं, 100 क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन के जवाब स्वरूप को देखते हैं तो पता लगता है कि आप कहीं भूल भुलैया में पहुंच गए हैं। किस तरीके के प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं, किस तरीके से आपको उलझाने की कोशिश की जाती है और कहीं कहीं तो सीधे लंगी मार करके गिराने की कोशिश की जाती है। आपको एक भूल भुलैया में डाल दिया जाता है कि आपको रास्ता ही दिखाई न दे। ये प्रश्नों के स्वरूप है, मतलब इस तरह के 100 प्रश्न, चलिए पूरे ही इस तरह के न हो लेकिन ज्यादा कुछ काफी कुछ प्रश्न तो ऐसे भी होते हैं, मतलब जैसे कि एक आप बाधा दौड़ लगा रहे हैं कि कहीं सपाट जमीन भी है तो कहीं बाधाएं भी खड़ी की गई है और जानबूझकर खड़ी की गई है, और उसमें आपकी गति देखी जाती है 100 क्वेश्चन 120 मिनट 1.2 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। इसमें आपको पढ़ना भी है, उसे समझना भी है और आपके दिमाग में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह सही उत्तर भी दे सके। यह है आपके गति का परीक्षण, आपके दिमाग की गति का परीक्षण कि कितनी तेजी से वह सोच सकता है 100 मिनट। इसके बाद जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि संतुलन, बैलेंस। बैलेंस किस तरह का, ये मनोवैज्ञानिक संतुलन की बात है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सिर के ऊपर से गुजर जाता है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हो सकता है कि वह भी सिर के ऊपर से गुजर जाए, कुछ हवा नहीं लग रहा है, अब आप थोड़े से बेचैन होते हैं, अरे बाप रे ये दूसरा वाला भी नहीं बना। आपका दिमाग कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि अगर यार मुझे 50% तो स्कोर करना ही है, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ मार्क्स अगर हम 52 पॉइंट समथिंग या 53% मान दें, इस बार तो कुछ बढ़ भी सकता है, तो 55% तो होना ही चाहिए। तो दो प्रश्न तो शुरू के मेरे दोनों के दोनों नहीं बने तो 100% मेरा गलत हो गया। जब आपका दिमाग जैसे ही ये सोचना शुरू करता है असंतुलित होना शुरू हो जाता है, असंतुलन आने लगता है, आप में घबराहट पैदा होने लगती है, बेचैनी आने लगती है, आप डिप्रेशन में आने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। यही वह क्षण है जब आपको खुद को संभालना होगा, अपने आप को संभालना होगा, आपको सोचना होगा कि कोई बात नहीं, शुरू की अभी तो दो ही है, हो सकता है कि 2-4-5 अभी मैं और पढ़ूं वे भी ना बने, लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखना होगा। दोस्तों आपको हिम्मत बनाए रखना होगा, हिम्मत इसलिए बनाए रखना होगा कि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो फिर आप क्या दे रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब है दूसरे से तुलना करके रिजल्ट की घोषणा होना। अगर आपके साथ ये हो रहा है, बहुतों के साथ ये हो रहा होगा, मान कर चलिए, और अगर बहुतों के साथ भी ये हो रहा है तो आपके साथ फिर कोई गलत नहीं हो रहा है, आपको इसका कोई भी नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, ये हौसला रखिए। हाँ अगर बहुत ही सामान्य से प्रश्न जिन्हें आप समझ रहे हैं कि ये तो बहुत ही सरल है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसको तो मैं बना ही लूंगा लेकिन नहीं बना पा रहा हूं, तब फिर बात दूसरी है। फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अब आप एग्जाम में बैठ गए हैं, अटेंडेंस शीट पर आपने सिग्नेचर कर दिए हैं, एक चांस तो आपका काउंट हो गया, तो अब आप अनुभव के लिए ही इस एग्जाम को पूरे धैर्य के साथ दीजिए, पूरे संतुलन के साथ दीजिए, मान करके चलिए कि कोई बात नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होना। देखिए बहुत से स्टूडेंट ये मान कर ही बैठते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि उनको मालूम है कि प्री की भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, और अगर उनको लगता है कि चलिए प्री की तैयारी है, हो सकता है कि निकल भी जाऊं, हो सकता है नहीं भी निकलूं, लेकिन अगर मैं निकल गया तो मेंस की तो मेरी तैयारी है ही नहीं। तो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, अपने अपने हिसाब से बैठते हैं, अपने अपने उद्देश्यों को लेकर के बैठते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एग्जाम से पहले भी लग रहा होगा, तो फिर आप क्यों बैठ गए? अगर बैठ ही गए हैं तो याद है इसका भी फायदा आप ले सकते हैं, फायदा इस मायने में ले सकते हैं कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, और मैं देखता हूं कि मैंने जो भी तैयारी की है मेरी तैयारी का स्तर क्या रहा है, मेरी कमजोरियां कहां कहां रही हैं, मेरी मजबूती क्या क्या रही है, इन सब का मूल्यांकन कीजिए। और मैं एक बात और आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा, एग्जामिनेशन दीजिए पूरे धैर्य के साथ दीजिए, और इसी रूप में दीजिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना है, इस रूप में मत दीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, भले ही ना हो रहा हो या आपको पता लग गया है नहीं हो रहा है, लेकिन दीजिए ये कि नहीं मेरा ये होना ही है। दोस्तों याद रखिए, संघर्ष करके जब आप हारते हैं ना तो उस हारने का भी अपना एक मजा होता है, संघर्ष करिए, ये जानते हुए संघर्ष कीजिए कि मुझे हारना है, कोई बात नहीं। आप देखिए कि जब क्रिकेट मैच होते हैं या फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, आपने देखे होंगे, साफ दिखाई दे रहा है कि अब दूसरी टीम हार रही है, लेकिन आप देखिए कि वो दूसरी टीम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करती, अंत तक लड़ती रहती, जूझती रहती है, और ये जानते हुए जूझती रहती है कि वो हारे हुए खेल के लिए केवल टाइम पास कर रही है। वही मानसिकता आपकी यहां होनी चाहिए, एकदम खिलाड़ी की मानसिकता होनी चाहिए, अंत तक जूझिए। और जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए, दोनों एग्जाम खत्म हो जाए, तब फिर आप उसी रात में फिर से अपने को संभालिए और बकायदे अपना रिव्यू लिखिए, विस्तार के साथ रिव्यू लिखिए। अगर चलिए उस रात में नहीं लिख पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी लिख लें, नेक्स्ट डे लिख लें। इसलिए कि टालने की देखिए हम सबकी आदत होती है, और आप इसको टालते जाएंगे तो ये टलता चला जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत इमरजेंसी काम नहीं है, है ना। फिर धीरे 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 वो चीजें आपके दिमाग में धुंधली होती चली जाएंगी, फिर आप लिख तो लेंगे एक दिन जबरदस्ती बैठ करके, लेकिन फिर उसमें उतनी चमक नहीं आएगी, और फिर आपने इतनी मेहनत की और आपने एग्जाम दिया भी, और फिर उसका जो फायदा उठाने का जब मौका आया तो आप उस फायदे को उठाने से चूक गए। तो आप लिख लीजिए, ये चीज आप पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ी चीज तैयार कर ली है, आपको महसूस होगा। मित्रों, ये आपको करना है, गति और बैलेंस, मनोवैज्ञानिक संतुलन लगातार बनाए रखना है, उसमें कहीं भी ढिलाई नहीं आने देनी है। एक बात जो मैं और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि आज 1 जून है, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस वक्त पर मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि आप 1 जून को मुझे सुन लेंगे और सोने से पहले सुन लेंगे। अब मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं वो ये कि प्लीज आप अपनी नींद में कोई कटौती मत कीजिए, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। मानकर चलिए कि आपने इतने दिनों तक पढ़ाई की है, और अगर उतने दिनों की पढ़ाई से कुछ नहीं हुआ है तो ये नींद को नष्ट करके और पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये बात अलग है कि चिंता में नींद नहीं आती है, एग्जामिनेशन का एक एक्साइटमेंट भी होता है, उसमें भी नींद नहीं आती है, अब वो तो बात देखिए अलग है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए नींद खराब मत कीजिए। नो डाउट कि आप रिवीजन करते रहिए, दिन का समय है, जो आपके सोने का टाइम टेबल है आप उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए, बकायदे आप नींद पूरी लीजिए, और साथ ही साथ याद रखिए कि अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए। भरी गर्मी है, जून गर्मी का क्लाइमेक्स है, और लू लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मौसम में, बिल्कुल हार्ड सीजन में, बीमारियों की आशंकाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो सारे वो प्रिकॉशंस लीजिए जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रख सके। बहुत सरल सादा भोजन कीजिए, भरपेट न खा करके थोड़ा सा कम भोजन कीजिए, पानी खूब पीजिए, शरीर में नमक की कमी मत होने दीजिए, नींबू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, प्याज खाइए। ये कुछ चीजें हैं जो सामान्यतः गर्मी के दिनों में बताई जाती हैं। मठा पीजिए, आम का पना पीजिए, और आपकी जो माँ हैं, बहनें हैं, ये सब जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, हमारे घर की महिलाएं इन सब में बहुत सिद्धस्त हैं, और वो ध्यान भी रख रही होंगी। और अगर आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने ढंग से भी इन सब चीजों की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, और ये बकायदे चीजें अवेलेबल भी मार्केट में होती हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में आप जरा सी भी जोखिम मत लीजिए, जरा सी भी जोखिम किया, चलो एक बार खा लेते हैं, क्या होता है, नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो अपने लेवल पर कर सकते हैं उस लेवल पर कोई आलस्य मत दिखाइए। आपके लिए ये बहुत चुनौती भरा क्षण है, बहुत चुनौती भरा क्षण है। मित्रों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो पूरी तरह से परफेक्ट तैयारी करके जाइए, अपने पॉकेट में कुछ चॉकलेट टाइप की चीज रख लीजिए। अगर आपको डिप्रेशन होने लगे, बहुत ज्यादा निराशा होने लगे, तो आप एक चॉकलेट खा लीजिए, आपके शरीर को थोड़ा सा ग्लूकोज मिल जाएगा, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेंगे, राइट। अगर आपके लिए कोई इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत होती है, तो जैसे किसी का सिर दर्द करने लगता है या वोमिटिंग आने लगती है, तो उस तरह की मेडिसिन भी आप अपने साथ रख लीजिए, ताकि और इससे पहले कि बात बढ़े आप दवाई ले लीजिए, बकायदे दवाई ले लीजिए और डॉक्टर से पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ करके आप दवाई रखिए, अपने मन से नहीं। वहां भी आपको कोई आलस्य नहीं दिखाना है। हर चीज परफेक्ट तरीके से आपकी होनी चाहिए, जिस पेंसिल से आपको निशान लगाना है आपके पास वो पेंसिल परफेक्ट होनी चाहिए। सारी चीजों को देख लीजिए, किन कपड़ों में आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप बिल्कुल वो कपड़े पहन लीजिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब प्री मैंने दिया था तो मैंने भोपाल से ही दिया था, तो उस समय मैंने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो बकायदे अपने कंधों पर गमछा टांगे हुए होते थे और जब बाहर निकलते थे तो उस गमछे को अपने सिर पर बांध लेते थे ताकि वो धूप से बच सके। तो वहां कोई इस तरह का लिहाज मत कीजिए कि यार दूसरा कोई क्या कहेगा, आप बस चीजें सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, जो आपको ठीक लगता है लेकिन वो सही हो वो आप कीजिए। और इस तरीके से बिल्कुल संतुलित शरीर, स्वस्थ शरीर और संतुलित मानसिकता के साथ आप एग्जाम देकर आइए। पेपर खराब होते हैं तब भी खुश रहिए और अच्छे होते हैं तब भी खुश रहिए। पेपर सरल आया है तब भी बहुत उत्साहित मत होइए और पेपर कठिन आया है तब भी बहुत निरुत्साहित मत होइए। सम बने रहिए और पेपर के साथ इंटरेक्शन बनाए रखिए। मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आप सबके साथ शेयर की हैं। कल मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा, शनिवार है, परसों तो अगर मैं बात करूंगा भी तो आप सुन नहीं सकेंगे और वैसे भी रविवार को बात होती भी नहीं है। तो मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से, और सच पूछिए तो अपने सभी अन्य प्रिय श्रोताओं की ओर से, आप उन सभी स्टूडेंट्स के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जो एग्जामिनेशन देने जाएंगे। और ईश्वर से भी हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे कि आपकी यह जो परीक्षा है या जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। और मित्रों, फिर एग्जामिनेशन हो चुके होंगे और फिर आगे हम लोग फिर एग्जामिनेशन में क्या रहा, कैसा रहा, इस पर फिर बातें करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत आप सब की सफलता के लिए शुभकामनाएं और अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।